Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
मुरली में जब हम मुरली सुनते हैं तो सेवा के लिए भी बाबा ने हमें बहुत सी युक्तियां बताई हैं। यानी सेवा करने का भी ज्ञान है, एक तो ठेठ ज्ञान है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, इसकी आयु क्या है, इसको भी हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन सेवा का भी ज्ञान चाहिए। बल्कि मम्मा तो कई दफा कहती थी कि ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए। जैसे कल बात निकल रही थी ना कि त्याग का भी त्याग तो ज्ञान का भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान का ज्ञान क्या है अभी उसकी बात हम नहीं करते, तू मच में नहीं जाते अभी इस समय, नहीं तो बाकी विषय रह जाएगा। लेकिन भाव यह है कि बाबा कई दफा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे जो चित्र बनाओ उस पर लिखो शिव भगवान आवाज, जो भी बात कहोगे उसके साथ साथ बोलो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, नहीं तो वो समझेंगे इनकी मनुष्य की मत है। ये आपकी जैसे ढाल है, जब आप कहेंगे कि ये हमने नहीं बताया, हमें भी शिव बाबा ने बताया, परिचय तो हमने यही देना है ना। अच्छा चित्र भी समझाओ प्रदर्शनी में, सबसे पहला कौन सा चित्र समझाओ, अलिफ का परिचय दो, अलिफ और बे का। कितने ज्यादा चित्र लगा देते हो और सारी प्रदर्शनी सारा मेला उसको एक ही दम समझा देते हो, हाथी से भी डबल किसी का सिरो दब कहीं समझ पाए। बेचारे मुंझे हुए लोग हैं और उनको इतना सारा विस्तार दे दोगे तो वो हजम भी नहीं कर पाएंगे, जैसे किसी को एक ही दिन में चार दिन का खाना खिला दो तो क्या उसका नतीजा होगा। तो बाबा ने सेवा के भी हमें जो विधि विधान है, जो उसका तरीका है, अच्छा सेवा भी करो तो किस तरह से सेवा करो, आपकी भाषा में कितना मिठास हो और आत्मिक दृष्टि हो और अपनी स्थिति पहले ठीक हो, उस रुहाब और रूहानियत से सेवा करो। तो ये भी तो सेवा का भी ज्ञान है। ज्ञान सुनेंगे नहीं और सेवा करने चल पड़ेंगे, उसका नतीजा क्या होगा। तो ये सेवा का भी ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब रोज हम मुरली सुनेंगे, और जब बाबा की मुरली से प्रेरणा प्राप्त करके हम सेवा में लग जाते हैं उसमें सफलता भी होती है, क्योंकि बाबा की प्रेरणा से हम वो सर्विस करते हैं, बाबा की मदद मिलती है, बल एक आ जाता है। जैसे आज देखो मुरली में था ना कि हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ो और ये योग से हेल्थ मिलती है उसको बताओ, योग से हेल्थ कैसे मिलती है तो ये सेवा, लेकिन वो कैसे बताओ कि योग से हेल्थ कैसे मिलती है, और ये कैसे सतयुग में शरीर भी छोड़ देते हैं वो सांप की खाल की तरह से, मिसाल दी थी ना, क्योंकि अभी से अभ्यास करते हैं देह से न्यारा होने का, और जब देह से न्यारा होते हैं और विकर्म भी दर्द करते हैं तो फिर निरोगी काया हो जाती है, काया कल्प हो जाती है, बाबा ने बताया नहीं सारा। इसलिए वो हेल्थ वालों की भी सेवा करो, और ये हॉस्पिटल भी है आपका जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो हॉस्पिटल है, और ये डॉक्टर बन के सेवा करो। तो डॉक्टर्स को अभी डॉक्टर लोग सेवा करने लगे हैं इस बात को लेकर, तो कितना सेवा का अच्छा रूप हो गया। तो ये बाबा ने जो बात बताई है, बाबा के शब्द जब हम ये किसी को बताएंगे तभी तो सेवा में सफलता होगी। तो सेवा के लिए भी जो ज्ञान है, विधि विधान है, सेवा कैसे करो, वो बाबा ने हर एक तरीका बताया, इसलिए भी ज्ञान सुनना जरूरी है। फिर उसके अलावा देखेंगे आप, बाबा हमेशा कहते, बाबा के सामने जो बैठ के ज्ञान सुनते थे तो बाबा का हमेशा ये कहना था कि ज्ञान सुनने वाले भी जो है उनमें अनेक प्रकार के, उनमें से भी जो ये सेवा करते होंगे या जिनको सेवा करने का एम होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान धारण होगा। अब बाबा मान लो बताते हैं कि देखो ये कहते हैं छिकर विक्कर सब में परमात्मा है, ये तो और ही परमात्मा की गिलानी करते हैं, निंदा करते हैं, मान लो ये पॉइंट देता है। अब बाबा ने ये मुरली में कहा तो जिसको ये होगा कि हमें सेवा करनी है तो उसकी बुद्धि में ये धारण होगा कि कल को कोई कहता है कि परमात्मा की, आप तो परमात्मा को छोटा सा मान रहे हो, ये तो परमात्मा की आप गिलानी कर रहे हो, हम तो कहते हैं परमात्मा बहुत बड़ा है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो तो सर्वव्यापक है, और आपने तो एक बिंदु बना के उस परमात्मा को हाथ में ला दिया, आप तो परमात्मा की निंदा करते हो, गिलानी कर रहे हो। तो बाबा ने हमें क्या पॉइंट दिया है उसका, कि आप जो कहते हो सांप में, बिच्छू में, टिंडर में, छिकर में, भित्तर में, और इसमें है सब में परमात्मा है, ये परमात्मा की कौन सा सम्मान कर रहे हो, ये कोई इज्जत है परमात्मा की। हम तो परमात्मा को परम धाम का जो प्योरेस्ट होलीएस्ट प्लेस है वहां का उसको निवासी मान रहे हैं, और आप क्या कह रहे हो। तो उसको जो ये होगा एम होगा कि कोई मेरे से ये बात कहेगा तो मैं उसको ये कहूंगा, तो उसकी बुद्धि में वो बात धारण हो जाएगी। और दूसरा जो है बाबा कहते हैं वो उबासियां लेता रहेगा, जमाइयां लेता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, झुटका आता रहेगा उसकी, उसकी बुद्धि में धारण नहीं होगा, उससे क्लास के बाद पूछो तो वो जवाब दे नहीं सकेगा। तो जो सेवा का जिनका लक्ष्य होगा उनको बल्कि ज्ञान धारण होगा, ये तो ठीक बात है। लेकिन ज्ञान जो धारण नहीं होगा तो फिर इस टाइम कोई बात कहेगा तो उसके अपने मन को भी रोग लग जाएगा, कहेंगे ये बात तो ठीक कहता है, हमने तो परमात्मा को हाथ मिला दिया है। तो बजाय उसको प्रभावित करने के खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। और अगर हमारे पास बाबा की वैरायटी पॉइंट्स होंगी, कोई किसी पॉइंट से कन्विंस होता है, कोई किसी पॉइंट से कन्विंस होता है, और उसमें भी बाबा कहते हैं कि सन्मुख बैठ के सुनो। सबसे पहले यह है कि सन्मुख बैठ के क्लास में सुनो, अमृत बोलो, उस टाइम बुद्धि फ्री होती है, फ्रेश होती है, सुनोगे तो बात बुद्धि में ठीक तरह से बैठेगी। उस टाइम ही अगर आप सेवा शुरू कर दो, सेवा तो है हमेशा ही, सेवा करो बेशक, लेकिन जो क्लास का टाइम है अगर उसको छोड़ के सेवा करने लगोगे, कोई ऐसी परिस्थिति है, ऐसा मौका है, ऐसी मजबूरी है, दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए भी बाबा कहते हैं कि क्लास जरूर करो, क्योंकि उससे आपकी सेवा में सफलता आएगी, आप फ्रेश होंगे, रुहाब होगा, रूहानियत होगी, सुबह को ज्ञान रूपी अमृत पिया होगा, जैसे स्नान करना सुबह जरूरी है वैसे आत्मा ने भी स्नान किया होगा, तो आपकी सेवा में भी वो खूबियां आएंगी। और अगर आप समझोगे सेवा सुबह उठते ही अपना नहा दोगे, सेवा में लग जाओगे, क्लास के टाइम क्लास ही नहीं करोगे, थोड़े दिन के बाद देखना क्या हालत होती है। तो ये ज्ञान से भी जो अरुचि पैदा हो जाती है ना, ये भी एक माया का सूक्ष्म रूप है। तो बाबा का हमेशा कहना कि पहले तो सन्मुख सुनो, अगर सन्मुख नहीं सुन सकते टेप सुनो, टेप नहीं सुन सकते तो मुरली पढ़ो। मुरली भी जब टीचर पढ़ के सुनाता है क्लास में, उसका अपना प्रभाव है, क्योंकि जहाँ पवित्र योगी बैठ के बाबा का जो स्थान है, जो बाबा के बने हुए ये तीर्थ स्थान है एक प्रकार से, क्लास जो बाबा की है ऑफिशियल, उसका जो वातावरण है उसमें बैठ के धारण करोगे, वहाँ की वाइब्रेशन कुछ और होंगी, बाहर की दुनिया की वाइब्रेशन कुछ और होंगी, और उस टाइम कहो आपके जी हम तो क्लास में आज नहीं आ सकते क्योंकि हमारा तो सेवा है, तो फिर उसका जो परिणाम है वो थोड़े समय के बाद आप देखोगे अवस्था हलचल होने लगी। तो सेवा ठीक है, लेकिन ज्ञान के बिना सेवा अधूरी रहेगी, अपनी अवस्था ही ठीक नहीं होगी तो दूसरे की अवस्था कैसे बनाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी होगी तो किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है, और आपको स्वयं भी नए नए अच्छे अच्छे पॉइंट की टचिंग होगी, अगर बाबा से कनेक्शन होगा तो ऐसे ऐसे जो उस व्यक्ति को चाहिए पॉइंट जो उसको अपील करे। ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस टाइम इस व्यक्ति को कौन सी बात कहनी चाहिए, तो बाबा उसकी जन्म पत्री को जान के हमें जो टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फिट बैठेगी बात उससे। तो सेवा के लिए भी जरूरी है कि हम योग युक्त हों, और योग युक्त अगर हम तभी होंगे जब हम स्वयं योग के टाइम योग का अभ्यास करेंगे, उसका बैलेंस रखेंगे। अगर सेवा का पलड़ा भारी हो जाएगा एकदम और योग का पलड़ा एकदम हल्का हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो नतीजा ये होगा कि योग के सब्जेक्ट में वीक हो जाएंगे। जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं ना क्लास में, लौकिक में भी कोई व्यक्ति एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और एक में उसका दोबारा देना पड़ता है इम्तिहान, और एक में वो अच्छे नंबर ले जाता है, नेक्स्ट रिजल्ट उसका क्या होता है, वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए सभी उसके विषयों का बैलेंस चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि अच्छा सेवा में आप बिजी रहेंगे, लेकिन सेवा में भी जो माइंड है वो किधर जाएगा। अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, और अगर माइंड खाली होगा, खाली दरवाजे खुले हों और घर कोई किसी का खाली हो तो उसमें चूहे बिल्ली सब आवारा गाय वगैरह सब आके अपना शेल्टर लेने लगते हैं। तो जो भी ये हमारा ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में नहीं होगा तो मनन चिंतन हम क्या करेंगे, बुद्धि में फिर वेस्ट थॉट्स आएगी, नेगेटिव थॉट्स आएगी। इसलिए भी सेवा के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। अब धारणा की बात करते हैं कि सेवा हम करते हैं तो धारणा उसके लिए कैसे जरूरी है। तो आप देखेंगे कि वैसे ही लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी में कोई सेवा करता है और उसका अपनी लाइफ अच्छी नहीं है तो लोग क्या कहते हैं उस व्यक्ति के लिए, क्या कहते हैं कि स्वयं की धारणा तो है नहीं, ये तो जैसे कि पंडित है, कहते हैं ना पंडित की मिसाल बाबा क्यों देते हैं। जैसे पिछले दिन कोई बता रहे थे ना कि वो एक पंडित की मिसाल थी कि उसने कहा कि एक माता ने कि मुझे नदी पार करके आना जाना पड़ता है, उसने कहा कि राम नाम लेते हुए तुम पार हो सकती हो। तो जब एक दिन उसने निमंत्रण दिया, उसने कहा पंडित जी चलो, उसने कहा भाई नाव तो है नहीं और नदी चढ़ी हुई है, कैसे चलूंगा। तो उसने कहा कि राम नाम लेते हुए मैं भी वैसे जाता हूँ, तो उसने तो वैसे ही कह दिया था, तो फिर क्या नतीजा निकला था उसको। तो उसको कहते हैं कोरा पंडित, औरों को कहना और खुद उसको कर नहीं सकना, उसका नतीजा क्या हुआ। तो इसलिए बाबा का हमेशा ये कहना था कि जो अगर सिर्फ मान लीजिए सेवा करते हैं और धारणा अपने जीवन में है नहीं, प्रैक्टिकल में लाते नहीं, तो वो एक पंचाई एक प्रकार से होगी, तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और आप क्या देखते हैं, बाबा कहते हैं कि स्वयं आप एग्जाम्पल बनो, और कहावत मशहूर है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। जो अपने लाइफ का जो नमूना हम लोगों के सामने पेश करते हैं, बाबा कहते हैं एग्जाम्पल और सैंपल जो बनता है, जैसे कोई माल भेजता है तो उसके सैंपल को देखकर खरीदता है। हमारे अगर अपने जीवन में धारणा होगी एक तो यह है कि आप कितने लोगों को समझाएंगे या प्रदर्शनी करेंगे या प्रवचन करेंगे या किसी को कोर्स देंगे, लेकिन अगर अपने जीवन में एग्जाम्पलरी जीवन होगा, हमारा अपना जीवन ही श्रेष्ठ होगा, तो उससे जो सेवा होगी वो वाचा से उतनी नहीं होगी। इसलिए बाबा का कहना यह है कि एग्जाम्पल बनो। उसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं धारणा करो और संत और फादर हमारे अपने जीवन से धारणा ऐसी हो जिससे दूसरों को लगे कि सचमुच ही इनको शिव बाबा ने, नहीं तो इतना ऊंचा इनको कौन बना सकता है। जरूर इनसे जो ऊंचा होगा वही उनको बनाने वाला होगा। तो हमारी धारणा को देखकर ही समझे कि ऐसे और मनुष्य कोई है नहीं, साधु संत महात्माओं का जीवन भी ऐसा नहीं। जरूर ये जो कहते हैं कि परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है, जिसकी सेवा आप करते हो लोगों को परमात्मा में निश्चय बिठाने की, वो तभी होगी जब धारणा होगी। तो सिर्फ सेवा नहीं, सेवा भी तभी पूरी हो सकेगी जब अपनी लाइफ एग्जाम्पल बनेगी, और एग्जाम्पल तभी बनेगी जब धारणा होगी। तो धारणा का सब्जेक्ट अगर वीक होगा तो सेवा स्वतः ही वीक होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन है। और किसी ने कहा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कहते हैं ना कि जो कर्म करके दिखाते हो, अगर श्रेष्ठ कर्म आप करके दिखाते हो, शब्दों के द्वारा वर्णन को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ आपकी अच्छी है ऊंची है, मान लो किसी को कहो कि क्रोध ना करो, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए आपका कोई अपमान करे या आपके साथ ठीक व्यवहार ना करे, आप उस टाइम शांत चुप रहो, क्रोध ना करो, तो उससे जो दूसरा व्यक्ति सीखेगा वो आपका सिर्फ कहने से नहीं उतना सीखेगा। तो सेवा जो आप करते हैं उसमें लोगों को यही तो कहते हैं कि विकारों को छोड़ो, परमात्मा में निश्चय रखो, जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, नरक नारायण बनो, लेकिन खुद अगर हमारा जीवन उसके समान होगा तो वो एक सर्विस में पुष्टि लाएगा, बन लाएगा, हमारी सर्विस फलीभूत होगी। नहीं तो अपनी ही सेवा करके उस पर पानी फेर देंगे, हमारी अपनी मेहनत ही जो है उसमें खत्म हो जाएगी। और फिर आप देखते हैं जहां धारणा नहीं होती वहां जब सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो तेरी मेरी का जब प्रश्न उठता है, अनबन मन मुटाव, आपस में एक लड़ाई झगड़ा, ज्यादा कहा सुनी, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि सेवा में वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। और फिर क्या आता है कि सेवा में मान कान का विचार आ जाता है, सेवा करके हमारा नाम हो, हमारा यश गायन हो, बाबा हो, ये भावना आ जाती है, क्योंकि धारणा नहीं होती। वो सेवा में जो एक त्याग हो, नम्रता हो, वो नहीं रह जाता, बल्कि एक शो एक प्रकार का हो जाता है, और उसकी वजह से आपस में टसल शुरू हो जाती है, स्ट्रगल शुरू हो जाती है। जो कल भी हम प्रश्न कर रहे थे कि किस प्रकार से वो किया जाए, अगर कोई सहयोग देना हो या नहीं, वो भी तभी पैदा होता है जब हम सिर्फ सेवा करते हैं और सिर्फ धारणा हमारी होती नहीं, हम मन में किसी के प्रति घृणा द्वेष अनबन ये रख लेते हैं। तो इसलिए धारणा का सब्जेक्ट अगर ना हो, ये बैलेंस अगर हमारा बिगड़ जाए तो भी सेवा नहीं होती। अब हम ज्ञान के सब्जेक्ट को लेते हैं। आप देखते हैं ज्ञान को तो बाबा ने कितने नाम दिए हैं, ज्ञान अनमोल रत्न है, अविनाशी रत्न है, ज्ञान संजीवनी बूटी है, ये ज्ञान रूपी गदा से हम माया को जीतते हैं, कहा ना ज्ञान अमृत है। बाबा ने ज्ञान को कितने नाम दिए हैं, और ज्ञान बिना गति नहीं, ज्ञान बिना सदगति नहीं, है ना। और परमात्मा को भी हम क्या कहते हैं, नॉलेजफुल है, नॉलेज उसका मुख्य पहला गुण है। और बाबा कहते हैं आप मास्टर नॉलेजफुल हो, मास्टर त्रिकालदर्शी हो, ये ज्ञान हमें त्रिकालदर्शी बनाता है, उसके बिना मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है, बाबा कहते हैं ना ज्ञानी को आत्मा मुझे प्रिय है, भक्त मुझे प्रिय है। तो ज्ञान की कितनी बाबा ने महिमा की हुई है, ज्ञानी आत्मा की या ज्ञान धारण करने वाले की। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई समझे क्लास की ज्ञान सुना और घर चल दिए और कोई सेवा भी नहीं करनी, धारणा पर भी ध्यान नहीं, योग भी अभ्यास नहीं करते, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के लिए वो एक उसका सेमिनार करना, कॉन्फ्रेंस करना, डिस्कशन करना, लिखना पढ़ना, अध्ययन करना, मुनियों को रिवाइज भी करना, ज्ञान धारण करना, ज्ञान को सुनना, लेकिन वो नेमी नाथ जैसे होते हैं ना भाई, मुरली सुनी और बस, वो नियम पूर्वक क्लास में आना और मुरली जैसे ही समाप्त हुई और चप्पल पहना और चल दिए। तो ये ज्ञान जो सिर्फ एक ज्ञान पर ही अटेंशन और सब्जेक्ट पर अटेंशन नहीं, ज्ञान के उनसे कोई भी पॉइंट पूछो तो बता देंगे, क्लियर कर देंगे, बुद्धि तेज है, बात को समझते हैं, लेकिन योग कहेंगे हमारा योग तो पूरी तरह से लगता नहीं, हल्का हल्का योग है, जो विकर्मों को दंश करने वाला, संस्कारों को बदलने वाला है वो उसकी योग की सेंग नहीं। या धारणा जिस प्रकार से होनी चाहिए, उनके सेवा के फील्ड में आते नहीं, संघर्ष के क्षेत्र में उतरते नहीं और उन परीक्षाओं में से पार होते नहीं, धारणा भी पक्की होती नहीं, किसी ने कोई बात कह दी तो महसूस कर गए, ज्ञान में भी आना छोड़ दिया फिर बाद में। तो ज्ञान के साथ साथ ये योग, धारणा, सेवा, ये क्यों जरूरी है, इनका बैलेंस क्यों जरूरी है, योग से हमारी बुद्धि क्लियर होगी और जब बुद्धि क्लियर होगी तो ज्ञान ठीक तरह से धारण होगा, क्योंकि बुद्धि धारणा मई करनी पड़ेगी जब योग युक्त होगी। इसलिए आप देखिए हमारी जो क्लासेस भी होती हैं उसमें सबसे पहले हमारा पीरियड कौन सा होता है, योग लगाने। जब योग लगाते हैं तो बुद्धि जैसे कोई एकदम समझिए कि धारणा के योग्य बन जाती है, क्लियर क्लीन हो जाती है। जैसे बर्तन में आप कोई चीज डालते हैं तो पहले उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तो योग भी इसी प्रकार का काम करता है। क्योंकि ज्ञान जो हमने बुद्धि में धारण किया तो वो तो एक प्रकार की ज्ञान जो है वो नॉलेज, उसका रियलाइजेशन जब होता है तभी ज्ञान को हम गहराई से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, ये ज्ञान हमने धारण किया, लेकिन वो आत्मा और ज्योति बिंदु का रियलाइजेशन करना वो योग से होता है। और अगर हमने योग ना अभ्यास किया, सिर्फ बुद्धि से समझ लिया, तो इंटेलेक्चुअली बुद्धि से तो हमने समझा, समझने मात्र हुआ, अनुभव उसका नहीं हुआ। अनुभव पक्ष जो होता है वो योग से परिपक्व होगा, और जब हम योग से उसका अनुभव करेंगे तो ज्ञान की जड़ें मजबूत होगी। ज्ञान में स्ट्रेंथ, ज्ञान में मजबूती तभी आएगी, उसमें निश्चय हमारा तभी संपूर्ण होगा, और लोगों को कहने में भी हमारे मन में बल तभी आएगा जब हमने उसका अनुभव किया होगा, उसको रियलाइज किया होगा। और अनुभव तभी किया होगा जब हमारा योग होगा। और वास्तव में आप देखेंगे कि ज्ञान है ही योग के अभ्यास के लिए। मैं आत्मा हूँ यह हमें किस लिए समझाया जाता है, सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि जीवन में लाने के लिए, ताकि हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति आत्मिक बने, और वो तो अभ्यास योग का करेंगे तभी बनेगी।